ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की और ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को विस्तार से जानकारी दी और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और मानवता के साथ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षित स्वदेश वापसी में निरंतर समर्थन के लिए राष्ट्रपति पेजेशकियन को धन्यवाद दिया। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को क्रूर आक्रामक कार्रवाई बताया और इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से अमरीका को जिम्मेदार ठहराया।
ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराग्ची ने देश के तीन परमाणु संयंत्रों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री अराग्ची ने चेतावनी दी कि इन हमलों के दुर्गामी परिणाम होंगे। अमरीकी हमले के कुछ ही घंटों बाद जारी बयान में ईरान ने अमरीका पर इसराइल के साथ तालमेल का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया कि अमरीका ने उसके उन शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमरीकी सेना के हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया भर के नेता संयम बरतने और कूटनीतिक वार्ता की पैरवी कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अमरीकी कार्रवाई का समर्थन किया है और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया है। अमरीकी हवाई हमलों पर फ्रांस ने कहा कि वे न तो हमलों में न हमलों की योजना में शामिल था। उन्होंने इस संघर्ष का क्षेत्र में विस्तार होने से रोकने के लिए अमरीका, ईरान और इसराइल से संयम बरतने का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है और सभी कर्मचारियों को हाल ही में वापस बुला लिया है। सऊदी अरब ने संघर्ष आगे बढ़ने की आशंकाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। कतर के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संघर्ष के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने आज सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इस बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत करीब 1,117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं है, इसलिए सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। गृहमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के परिसर के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में सुरक्षा बल जिस तरह से अभियान चला रहे हैं उससे अगले वर्ष मार्च तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने दो लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा से संबंध थे। ब्रिटेन के बर्मिंघम से दिल्ली आ रहे विमान में बम होने की धमकी के बाद विमान को रियाद की तरफ मोड़ दिया गया। एयर इंडिया ने बताया कि फ्लाइट AI-114 रियाद में सुरक्षित उतार दिया गया। लीड्स में तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 455 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।